निज भृत्य भाषिता अपने सेवक श्री प्रहलाद महाराज की बात को सत्य करने के लिए और व्याप्ति सर्वेषु भूतेषु अखिलेषु भूतेषु समस्त वस्तुओं में प्राणियों में अप्राणियों में छोटी या बड़ी सभी वस्तुओं में इसके साथ व्याप्ति अपनी व्यापकता सिद्ध करने के लिए आत्मन अपनी स्वस्य अपनी व्यापकता सिद्ध करने के लिए अदृश्यता श्री भगवान दिखाई दिए अद्भुत रूपम उद्वहन अद्भुत रूप धारण किए हुए स्तंभे उसी भवन के खंभे में हिरण्यकश्यपु देख रहा था। पहले उसने ये सोचा कि ये कोई सिंह है, परंतु और अधिक ध्यान से देखने पर उसे लगा कि ये सिंह नहीं है, न मृगा में पशु नहीं है। बाद में सोचा कि ये मनुष्य जैसा लग रहा है। ध्यान से देखने पर उसे लगा कि ये मनुष्य भी नहीं है, न पशु है न सिंह है, ये कौन जानवर प्रकट हो गया। इसी उहापोह में हिरण्यकश्यपु पड़ गया। श्री प्रहलाद महाराज को मारने की इच्छा से वो बहुत तरह से दुर्वचन बोल रहा था। अंत में उसने पूछा कि तुम जिस ईश्वर का भजन करते हो वो कहाँ है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा वे सर्वत्र हैं। क्वासव तो हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या कहा, कहाँ है वह? क्वासव यदि सर्वत्र, यदि वह सर्वत्र है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, तो फिर वह खंभा में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद जी ने कहा माया तो दृश्यते, मेरे द्वारा तो दिखाई पड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। हिरण्यकश्यपु कहा कि माया न दृश्यते, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। श्री प्रहलाद महाराज भगवान को प्रणाम करने लगे, खंभा में देख कर प्रणाम करने लगे। तब हिरण्यकश्यपु को विश्वास हो गया कि इसमें इसका ईश्वर है, तभी प्रणाम कर रहा है। इसी से बड़े क्रोध में आकर के अपने फिस्ट से मुष्टिका से उसी खंभे पर मारा जोर से। उसी समय तदैव तस्मिन निनदोति भीषण बहुत भयंकर आवाज हुई, सिंह के दहाड़ने की इतनी भयंकर आवाज हुई कि ब्रह्मा जी अपने आसन से गिर पड़े सत्य लोक में और सब लोकपाल यही मानने लगे कि अब हमारे लोक का प्रलय होने वाला है, कहाँ घटना हो रही है और कहाँ आवाज पहुंच रही है। अहो विलंब से ये आवाज सत्य लोक में चली है। तदैव तस्मिन् निगदति भीषण बभू जैनन कटा हम अस्पताल। इतनी भयावह इतना भयावह भयावह साउंड हुआ कि ब्रह्मांड का कवर फट गया। अंधकटा हम स्फुटल। श्री ब्रह्मा जी बाद में अपने को संभाल ले और ये विचार करने लगे कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है, ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो ध्वनि को लक्ष्य करके वे अपने वाहन से हंस हंसाकार वाहन से चले। इसके साथ ही अन्य समस्त देवता भी अपने अपने लोक से उस ध्वनि का लक्ष्य करके चले। आने में देर हुई। इधर हिरण्यकश्यपु चिंता में पड़ गया कि आवाज कहाँ से निकली। उसको पता नहीं चला कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। जिस खंभे में प्रहलाद को बांधा था और जिस पर मुष्टिका का प्रहार किया था, उसी खंभे से ये भयंकर ध्वनि आ रहे थे। हिरण्यकश्यपु को इसका पता नहीं चला। वो यही सोचा कि सभा में इस हाल में आवाज आ रही है, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है, कहाँ से उत्पन्न है, वो कुछ भी समझ नहीं पाया। श्री प्रहलाद महाराज को मारने का वो उपक्रम कर रहा था, हाथ में तलवार लेकर के पैंतरा बदल रहा। उसके कहने का यही आशय था कि यदि इस ईश्वर को भगवान को तुम छोड़ नहीं दोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तुम्हारा मस्तक निश्चित काट देना। प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भय थे, उनको विश्वास था कि भगवान रक्षा करें। वो बार बार धमकी दे रहा था और भगवान के बारे में पूछ रहा था, कहाँ रहता है, क्या स्वभाव है उसका। प्रहलाद महाराज ने कह दिया स्तंभे भगवान खंभे में भी है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या खंभे में भी है, यदि सर्वत्र है तो खंभे में भी है। तो भगवान प्रहलाद महाराज की बात को सत्य करने के लिए प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ खंभे में है, यदि सर्वत्र है, सभी वस्तुओं में है। तो प्रहलाद महाराज की बात को सत्य करने के लिए श्री भगवान खंभे में प्रकट हुए। स्तंभे सभाया उसी हाल में न मृगम न मानसम। वे आधा सिंह थे और आधा मनुष्य थे। ऐसा रूप हिरण्यकश्यपु या कोई भी कभी न सुना था और न देखा था। इसलिए नारद जी कहते हैं राजसूय सभा में अद्भुत रूपम उद्भवः। अद्भुत रूप आधा सिंह और आधा मनुष्य, ये कौन प्राणी हो सकता है। अद्भुत रूप अमूर्त है, अद्भुत रूप। श्री भगवान खंभे में प्रकट हुए यह सिद्ध करने के लिए कि मैं सब जगह हूँ, अपनी व्यापकता को सिद्ध करने के लिए। तत्काल में श्री प्रहलाद महाराज की बात को सत्य करने के लिए प्रहलाद महाराज ने अशुभ बालकों को कहा था कि भगवान महान से महान वस्तु में भी हैं और छोटी से छोटी वस्तु में हैं। परावरेषु भूतेषु भगवान आस्तेषु, भगवान पर और अवर सभी वस्तुओं में है। पर जैसे हिमालय, मेरु पर्वत, मंदर पर्वत आदि में है और परमाणु में भी है, सर्वत्र है। तो प्रहलाद महाराज की बात को सत्य करने के लिए श्री भगवान प्रकट हुए। और इसके साथ ही व्याप्तिम च भूते सखिले सुचात्मना आत्मना, अपनी व्यापकता सिद्ध करने के लिए प्रकट हो गए। बहुत महत्वपूर्ण उद्गार है भगवान की अलीला भक्तों को उत्साह देने के लिए, सबको विश्वास रखना चाहिए कि भगवान सर्वत्र हैं, सभी प्राणियों में हैं, सभी वस्तुओं में हैं, तो वे हमारे श्री विग्रह में क्यों नहीं है। यदि कोई भक्त भगवान की मूर्ति को रखे हैं तो उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापक है, तो मूर्ति में भी हैं। और कभी भी प्रकट हो सकते हैं। आज का यह दिन परम मंगलमय है, भक्ति में उत्साह देने वाला है। जिस दिन भगवान प्रकट हुए और पत्थर में प्रकट हो गए, प्रायः भगवान के जितने भी श्री विग्रह हैं उसमें ज्यादा पत्थर के ही हैं, कुछ धातु के हैं, कुछ कागज पर पेंट किए हुए हैं, लेकिन सब जगह में है। सर्वत्र अपनी भगवत्ता को लिए हुए, अपनी सर्वज्ञता को लिए हुए हैं, हमारी प्रार्थना को, हमारी भावना को वे समझते हैं। हम जो भी शब्द बोलते हैं प्रार्थना के, भगवान एक एक शब्द ध्यान से सुनते हैं और अवश्य उसका उत्तर देंगे। आज का यह दिन भगवान की इस भक्ति को पुष्ट करता है। श्री प्रहलाद महाराज की बात को उन्होंने सत्य सिद्ध किया, इसके साथ श्रील प्रभुपाद की बात को, और संसार में जितने भक्त हैं सबकी बात को सिद्ध कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी हजारों हजारों श्री विग्रह की स्थापना किए विश्व में, और वे कहा करते थे यह केवल स्टैचू नहीं है, यह मूर्ति भी केवल नहीं है, भगवान है साक्षात। तो श्री भगवान ने श्री प्रभुपाद की बात को सिद्ध किया, प्रहलाद महाराज के उदाहरण से इस बात को हम समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के वचन को भी सत्य सिद्ध किया, भविष्य में होने वाले अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की बात को वे रखेंगे, विश्वास होना चाहिए भगवान है और सर्वत्र है। इसके पहले कोई विवाद कर सकता था भगवान कहाँ है, हिरण्यकश्यपु के पक्ष से कह सकता था भगवान नहीं है, लेकिन श्री भगवान व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु अखिल वस्तुओं में अपनी व्यापकता सिद्ध कर दिए। भूतकाल में होने वाले अपने भक्तों की बात को सिद्ध कर दिया उन्होंने, भविष्य में होने वाले भक्तों के वचन को भी सिद्ध करें। एक उदाहरण द्वारा सर्व काल में अवस्थित श्री भगवान इस बात को सिद्ध कर दिए। किसी भी जगह में, किसी भी देश में, कहीं भी कोई भक्त रह रहा है और यदि वो मानता है कि श्री भगवान सर्वत्र है, तो इस बात को भगवान सिद्ध करेंगे, सत्य करेंगे। सत्यम विधातम निजभृत्य भाषित, अतः ये भगवान का बहुत बड़ा उत्तर है नास्तिकों को जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, और मानते भी हैं तो सर्वव्यापक नहीं मानते हैं। तो भगवान ये दिखा दिए कि मैं सर्वव्यापक हूँ, सब जगह पर हूँ, सब में हूँ, इसलिए सिंह लीला द्वारा भगवान ने इस बात को सिद्ध किया। कोई पूछ सकता है कि भगवान खंभे में क्यों प्रकट हुए? खंभे में इसलिए प्रकट हुए कि प्रहलाद ने कह दिया कि भगवान सर्वत्र हैं, निर्जीव वस्तुओं में भी हैं, सजीव वस्तुओं में भी, छोटी वस्तुओं में और बड़ी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में है, मच्छर में भी है, ब्रह्मा में भी है, सर्वव्यापक। तो कोई अकेले डीटी रूम में भगवान प्रकट नहीं हुए, सभा भरी हुई थी, खचाखच असुरों की सभा थी, बहुत बड़ा हाल था, ठसाठस भरा हुआ था। श्री प्रहलाद का वध करने के लिए हिरण्यकश्यपु तैयारी कर रहा था। उस सभा में बड़े प्रचंड असुर सब बैठे थे, स्तंभे सभाया, उस सभा में जहाँ हजारों लाखों लोग बैठे थे उनके बीच में श्री भगवान दिखा दिए कि मैं पत्थर में हूँ, पत्थर में से प्रकट हो गए। सत्यम विधातुं निजभृत्य भाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अपनी व्यापकता को सिद्ध करने के लिए दिखाई दिए, खंभे में खंभे से प्रकट हो गया और सब लोग देखे। सहस्रों सहस्रों असुर बैठे थे सहन, भगवान कहीं छिप करके अवतार नहीं ले लिए किसी रूम में या अकेले में, सबके सामने प्रकट हो गए। पहले तो भगवान की ध्वनि को सुन करके आश्चर्यचकित थे कि किसकी आवाज है, हिरण्यकश्यपु। लेकिन बाद में उसने देखा, बड़े ध्यान से देखा तो स्तंभ से मध्यात अंदिंदिर जिहान, खंभे से के बीच से भगवान खंभे को विदीर्ण करके प्रकट हो रहे थे। अनुवीर जिहान, जैसे सूर्य उगता है अंधकार का विनाश करके, वैसे उस खंभे का विनाश करके श्री भगवान प्रकट हुए। स्तंभे सभाया नमृगम नमास, देखते ना, न यह मनुष्य है न सिंह है, आधा अंग श्री भगवान का सिंह का था और आधा नर का, मनुष्य का। कमर से ऊपर सिंह थे और कमर से नीचे मनुष्य थे। भगवान का यह भक्त रक्षी रूप सदा जीवित रहे, भक्तों का भय दूर करे। जब यह इस मीमांसा में पड़ा हुआ था हिरण्यकश्यपु कि कौन हो सकता है, ये कौन है इस प्रकार का रूप बनाया, तो वो तुरंत गेस कर लिया, ये हमारा प्रसिद्ध शत्रु कृष्ण है, हमारे भाई का पद करने वाला विष्णु है, उसी का नाटक है। पहले 12 रूप धारण करके हमारे भाई का पद किया और अब सिंह बनकर आया है। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, आज इसको खत्म करके रहूंगा। निरंतर वैर भाव द्वेष भाव की वृद्धि हो रही थी, भगवान से उसको डर नहीं लगा बल्कि और उत्साह आ गया कि आज भेंट हो गई, इसको मार दूंगा। इसका बहुत कठिन हृदय है। सभा में प्रवचन किया था पहले कि विष्णु पहले सम था, पहले सबको एक दृष्टि से देखता था, लेकिन इसके भक्तों ने दौड़ धूप करके इसको अपने पक्ष में कर लिया, इंद्र आदि देवताओं ने इसको अपने पक्ष में कर लिया और यह विषम हो गया। इसलिए इसने अपना स्वभाव छोड़ दिया तो मैं भी इसकी जान मार दूंगा। जब अपना स्वभाव नहीं रखा तो जीने लायक नहीं। तो उस दिन सभा में प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा करके त्रिशूल उठा करके प्रतिज्ञा किया, ये कथा है तीसरे अध्याय सब सब असुरों के सामने प्रतिज्ञा किया कि मैं अगर हिरण्याक्ष का भाई हूं तो अपने भाई के वध का बदला चुका लूंगा। इसी त्रिशूल से मैं विष्णु का वध करूंगा। सबके बीच में शपथ लिया मैं मारूंगा उसको। सभी असुरों को कह दिया पृथ्वी पर जा करके यज्ञ बंद करो, देवताओं का बल कम हो, जहां जहां गौ ब्राह्मण रहते हैं उन देशों में आग लगा दो। क्योंकि यही विष्णु को पोषने वाले लोग हैं। इसके बाद गया तपस्या करने, मंदर पर्वत की घाटी में तपस्या करने गया। इसने सोचा कि तपस्या करके शक्ति अर्जन करनी चाहिए और तब मैं विष्णु का वध कर सकूंगा। बहुत घोर तपस्या की, खड़ा होकर के तप कर रहा था एक पैर से, तो उसके सिर से एक आग निकली जैसे बिकट धुआं निकल रहा था। सिर से धुआं और ज्वाला, उससे देवताओं का लोक जलने लगा, ऐसे व्याकुल हो गए। तब सब ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु कोई उपाय कीजिए, हिरण्यकश्यपु के सिर से ज्वाला निकल रही है, हम सब देवताओं का रूप जल जाएगा, जब तक नहीं जला है आप जा करके कुछ उसको दे करके सांत्वना दीजिए। तो श्री ब्रह्मा जी आए मंदर पर्वत पर, वहाँ आकर के उन्होंने देखा तपस्या करते करते हिरण्यकश्यपु के शरीर पर दीमक लग गए थे, झाड़ियाँ उग गई थी, कहीं पता नहीं लगता, और शरीर में जितना भी चांद था रक्त सब खा गए, चींटियाँ खा गई थी, दीमक खा गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब ब्रह्मा जी आकर के अपने कमंडल के जल गंगा जल को छिड़क स्प्रिंकलिंग किए, तब वह प्रकट हुआ सोने के समान दिव्य शरीर से, चमक रहा था, प्रकट हुआ। और उसने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ऐसा तपस्वी अब तक कोई नहीं हुआ, बिना पानी पिए करोड़ों वर्षों तक तुम प्राण धारण किए, तुम्हारे प्राण रहे केवल हड्डी में, केवल अस्थि में सब प्राण है, बिना पानी पिए करोड़ों वर्ष तुम जीवित रहे, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि आप मुझे देना चाहते हैं, सचमुच आप मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे देना चाहते हैं तो मुझे अमर होने का वर दीजिए, मैं कभी न मरूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये जो संसार का नियम है सबको बचना पड़ता है, अतः ऐसा वर मैं नहीं दे सकता, मैं स्वयं अमर नहीं हूं। तो ठीक है, आप ये वर दीजिए, आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी वस्तु से मेरी मृत्यु ना हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं। तो उसने मांगा कि मैं धरती पर ना मरूं, कभी आकाश में वायु दुर्घटना आदि से मैं न मरूं। आकाश में ना मरूं, धरती पर ना मरूं, रात में ना मरूं और दिन में ना मरूं, किसी जानवर से, पशु से ना मरूं, किसी अस्त्र से ना मरूं। उसे भय था कि भगवान विष्णु का चक्र बहुत भयावह है। तो उसने वर मांगा कि मैं किसी अस्त्र से ना मरूं। रात में ना मरूं, दिन में ना मरूं। एक प्रकार से वो उसने बुद्धि लगा करके ब्रह्मा जी को बाध्य कर दिया। तो इतना ही बाकी था कि मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से कह ही दिया, लेकिन फिर भी गुंजाइश थी, पृथ्वी पर नहीं मरेगा, आकाश में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, दिन में नहीं मरेगा, किसी पशु से नहीं मरेगा, किसी अस्त्र से नहीं मरेगा। और उसने कहा कि आप एक बार दीजिए कि समस्त लोकपालों की सारी शक्ति को मैं अकेले धारण करूं। जितने भी बड़े बड़े लोकपाल हैं, देवराज इंद्र, वरुण, जमराज, इन सबकी शक्ति को मैं अकेले धारण करूं। युद्ध में कोई मुझे जीत ना पाए, मैं सबको जीत लूं। तो ब्रह्मा जी ये सब कह दिए ठीक है। ब्रह्मा जी से बर पा करके वो और अधिक निर्भय होकर के सबसे पहले स्वर्ग पर चढ़ाई की। मैं जानता था कि इंद्र विष्णु का इलाही है, सहयोगी है। स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्र को पकड़ लिया, अपने अधीन कर लिया, सब देवताओं को अपने पास में कर लिया। कोई युद्ध करने का साहस नहीं करता, बहुत बड़ा उपद्रव किया। सब कुछ तो सहन हो गया, लेकिन अंत में वो अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को पढ़ने के लिए भेजा। वो विद्यालय में गए तो वहीं सभी विद्यार्थियों को भक्ति की शिक्षा देने लगे, सबको भक्त बना दिया। इस घटना से हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी हुआ और प्रहलाद महाराज को समझाने का प्रयास किया, नहीं माने तो उनके वध का बहुत प्रयास किया, फिर भी मरे नहीं। और अंत में जब प्रहलाद को अपने हाथ से मारना चाहता, उसकी भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भगवान की ये सब लीलाएं आज के दिन ही हुई थी, नृसिंह चतुर्दशी। अतः हम भक्तों के लिए तो यह परम मंगल नहीं है। समस्त दुख दरिद्रता से रोग दुख से मुक्ति देने वाला है, यहाँ तक कि मृत्यु से मुक्त करने वाला यह पर्व है। हिरण्यकश्यपु नृसिंहदेव के भयानक रूप को देखकर विचार करने लगा कौन है, लेकिन वह इस निर्णय पर पहुंच गया कि यह विष्णु हो सकता है। प्रायण मेयम हरिणो माइना बधा स्मृतोदेन समुद्र तेन संभव है, हमारे पीछे तो विष्णु ही पड़ा हुआ है। हमारे भाई को मारा इसलिए उसका मन बढ़ गया है। संभवतः विष्णु का एक प्लान है, कृष्ण का प्लान है मुझे मारने का, और मुझे मारने के लिए ही अजीब कपट से आधा सिंह आधा मनुष्य बनकर आया है। तैयार है, बड़े उत्साह में है, विराज का पद कर दिया इसलिए इसका मन बढ़ा हुआ है। समुद्रत है और मुझे मारने के लिए समुद्रत है, लेकिन किम इससे क्या होगा, ये हमारा क्या कर देगा, कुछ नहीं, आज इसको मरना है हमारे हाथ से। निरंतर वैर भाव की वृद्धि हो रही थी, द्वेष बढ़ रहा था, तो भगवान को देख करके हिरण्यकश्यपु को भय नहीं लगा और लड़ने का उत्साह बढ़ गया। वो अच्छा मामला है कि हमको लड़ने का एक अवसर मिला, आज विष्णु को मार करके मैं भाई का बदला चुका लूंगा। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी, आज भेंट हो गई। यह मुझे मारने के लिए तैयारी करके प्रकट हुआ है, लेकिन इसके तैयारी में कोई दम नहीं है। मैं आज अवश्य इसकी सत्ता समाप्त कर दूंगा। इस तरह से कहते हुए हाथ में गदा लेकर के गदा को बड़े वेग से घुमाते हुए भगवान पर अटैक किया नृसिंहदेव को मारने के लिए। गदा से प्रहार किया, गदा से प्रहार कर रहा था, उसी समय सगदम गदा के साथ ही भगवान उसको पकड़ लिए, सिंह की पकड़ में आ गए। बहुत छटपटाने लगा, तो कुछ देर के लिए भगवान उसे अपने हाथों से छोड़ दिए, कुछ पकड़ ढीला कर दिए और निकल गया हाथ से। इससे उसे बहुत खुशी हुई, कि सिंह की पकड़ में आकर के वो छूट गया, तो थोड़े देर आराम करके जितना समय अपनी थकावट को दूर किया, सिंह की पकड़ में आ गया था, इससे उसे कुछ थकावट हुई थी, परंतु कुछ रेस्ट करके इस थकावट से मुक्त हो गया। और ये सोचने लगा कि हमसे डर रहा है, उसने डर करके हाथ से छोड़ दिया। तमन निमानो निजबिज संकृतम, भगवान को भयभीत समझा और समझा कि हमको अपने हाथ से छोड़ दिया तो हमसे डर रहा है। लेकिन वह केवल मोमेंटरी लिफ्ट थी, थोड़े काल के लिए भगवान ने छोड़ा, अंत में हमें कस्पुट पद करेंगे लेकिन छोड़ दिया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे गरुड़ किसी सांप को अपने पंजे से छोड़कर थोड़े काल के लिए खेल, उस तरह से भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकश्यपु को छोड़ दिए, हाथ से ढीला कर दिया। तो वो समझा कि ये हमसे डर रहा है। अब जब वह भगवान के हाथ से छूट गया हिरण्यकश्यपु, उसको देख करके देवता लोग हाय हाय करने लगे, बहुत दुख में पड़ गए कि हाँ ये अमंगल हो रहा है, अब क्या होगा, ये भगवान के हाथ से छूट गया। तो पहले से ही देवताओं के आवास को हिरण्यकश्यपु छीन लिया, वे लोग बादल की ओट में होकर के जुट देख रहे हैं, छिपे हुए थे, सामने नहीं आ सकते थे, बादल के कवर से अपने को छिपाए थे। वो सब दुख प्रकट कर रहे हैं, ऐसा ही दुख एक बार प्रकट हुआ था जब हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हो रहा था। हिरण्याक्ष गदा युद्ध कर रहा था भगवान बराह देव के साथ, और इतना जोर से गदा पर प्रहार किया कि भगवान के हाथ से वो गदा गिर पड़ी, कोमल की गदा, और लट्टू की तरह नाचती हुई शोभा दे रही थी। तो और देवता लोग तो शोक के, ब्रह्मा जी भी चकित हो गए, वो भी कहने लगे हे प्रभु आप इस देर मत कीजिए, ये अभिजित मुहूर्त चल रहा है, शीघ्र शीघ्र इस दैत्य का वध कीजिए। तो भगवान उस समय मुस्कुराए, बड़ा देव मुस्कुरा करके ब्रह्मा जी को देखे, आप घबराइए मत, मैं अभी इसका वध करूँ। वही घटना यहाँ याद आ रही है, सभी देवता निराश हो गए, यह हिरण्यकश्यपु नहीं मरी है, भगवान के हाथ से छूट गए। कुछ देर विश्राम करके वो अपने ढाल को लिया, ढाल चर, ढाल दूसरे के प्रहार से बचने के लिए दिया जाता है, ढाल दिया और तलवार खटक दिया। उसने सोचा कि एक बार मैं विष्णु की पकड़ में आ गया था लेकिन अब छूट गया, अब नहीं पकड़ में आ सकता। तो बहुत तेज गति से खड़क चलाने लगा, चारों तरफ घुमा रहा था, जैसे बाज पक्षी होता है, सेम उसकी बड़ी स्पीड होती है, कभी ऊंचे कभी ऊपर कभी नीचे, तलवार को भाजते हुए युद्ध कर रहा था। सोच रहा था कि विष्णु मुझको पकड़ ना पाए, विष्णु का प्रहार सफल न हो। ढाल भी लिए था और प्रहार करने के लिए खड़ग दिए थे, बहुत तेज गति से, प्रायः यह असंभव लगता था कि भगवान उसको पकड़ सकते। तीक्ष्ण तलवार चारों तरफ घुमा रहा था, कहीं से पकड़ने का अवसर नहीं मिल रहा था। अच्छिद्र, लेकिन भगवान में तो अद्भुत बुद्धि और पराक्रम है। उन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं पकड़ने आए, तो सिंहदेव अट्टहास किए। अट्टहास एक हंसी होती है, बहुत भयानक, उसको अट्टहास कहते हैं। बहुत जोर से भगवान ने अट्टहास किया और इतना भयंकर अट्टहास कि इससे हिरण्यकश्यपु की आंखें बंद हो गई। देख नहीं पा सकता, ऐसी समय भगवान ने उसको पकड़ लिया। पकड़ करके उस सभा के द्वार पर ले गए, प्रवेश द्वार पर, और वही हिरण्यकश्यपु का सिंहासन मिल गया। एक हाथ से खींच कर दे रहा है सिंहासन हिरण्यकश्यपु का, जो हिरण्यकश्यपु का उच्छिष्ट था, जिस पर हिरण्यकश्यपु बैठता था, उस आसन को भगवान भाषते हुए दे रहे हैं दरवाजे पर। वे घर से बाहर भी थे और नहीं भी थे, ले जाकर के हिरण्यकश्यपु को अपने जांघों पर लिटा लिए। वो उसका शरीर न आकाश में था न धरती पर था, आधा धरती पर आधा आकाश में, दोनों जगह नहीं था। वहां जाकर भगवान ने अपने विकराल नख से उसके पेट को फाड़ दिया। नख कोई अस्त्र नहीं है और जीवित भी नहीं है, मरा हुआ नख, इसी से लोग काट देते हैं। नखों से भगवान उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर पेट को फाड़ दिया। हिरण्यकश्यपु का शरीर ऐसा बलवान था कि एक बार देवराज इंद्र ने वज्र मारा उस पर, लेकिन वज्र के प्रहार से चमड़े पर खरोच भी नहीं आई थी, लेकिन ऐसे कठोर शरीर को भगवान ने अपने नख से फाड़ दिया, वैसे फाड़ दिया जैसे गरुड़ जी किसी भयंकर विषधर सर्प को फाड़ देते। एक ही श्लोक में दो उदाहरण है, भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को कैसे, जैसे सर्प विष को पकड़ लेता है चूहा को, तो पकड़ने के विषय में सर्प का उदाहरण और फाड़ने के संबंध में विदारणे गरु जी का उदाहरण। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा वैसे जैसे सांप चूहे को पकड़ लिया, फाड़ दिया उस प्रकार से जैसे गरु महाविष्धर सर्प को फाड़ दिया। केवल सात श्लोकों में हिरण्यकश्यपु के द्वारा युद्ध का वर्णन है, भगवान के साथ युद्ध किया। लेकिन यह युद्ध लीला भी बड़ी सुंदर है भगवान, जिसमें हिरण्यकश्यपु को हार रहे हैं। हिरण्यकश्यपु को जब पकड़ करके भगवान हार रहे थे तो उस सभा में जो असुर जुटे हुए थे, असुर सेनापति, वे सब भगवान सिंहदेव को मारने के लिए टूट पड़े अस्त्र शस्त्र लेकर। तो भगवान सिंह सिंह बने हुए हैं, जिसे सिंह हाथियों को पकड़ पकड़ कर भाग देता है, वैसे हजारों हजारों असुरों को मारने लगे उछाल उछाल करके। सिंह बहुत छलांग मारता है, सिंह के रूप में भगवान हजारों असुरों को एक साथ मार देते थे। अपने नखों से सबको नोच रहते थे, फाड़ देते थे, किसी को खाने लगते थे। सिंह खाएगा ही, केवल हिरण्यकश्यपु का ही वध भगवान नहीं किया। जब हिरण्यकश्यपु के लाश को फेंक करके ईसाई निकाल करके भगवान खाली हुए, तो असुर लोग उनसे युद्ध करना चाहते थे, तो असुरों को पकड़ करके मारने लगे। साथ कोई भाग नहीं सका, कोई भी भागने का प्रयास किया तो भगवान सिंह बने हुए बहुत तेज गति से छलांग मार करके उनको पकड़ करके खा लेते थे, फाड़ देते थे। भगवान का नाम असुरारी बहुत प्रसिद्ध है, सारे असुरों को मार दिया। हिरण्यकश्यपु के साथ ही सारे असुर शांत हो गए, नष्ट हो गए। श्रील प्रभुपाद जी इसके प्रपाठ में कहते हैं कि किसी दिन भगवान असुरों का विनाश कर देंगे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। एक सेकंड में सारी नास्तिकता को खत्म कर देंगे। जो असुरों का दल बढ़ा हुआ है संसार में, भगवान को नहीं मानना, भगवान की सुप्रीमेंसी को नहीं मानना, और साधारण लोग भी वैज्ञानिकों की दुहाई देते हैं, वैज्ञानिक ऐसा है, ईश्वर है, भगवान है, इन मूर्खों को भी पता चल जाएगा भगवान कभी भी अपना प्राकार प्रकट करके क्षण भर में ठीक कर सकते हैं। एक समय संसार में क्षत्रियों की शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी, बहुत अत्याचार कर रहे थे, तो भगवान ने अवतार लिया एक ब्राह्मण के रूप में, एक सुराम के रूप में, और संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश कर दिया। उनके लिए बिल्कुल आसान काम, संसार के समस्त क्षत्रिय उनका मुकाबला नहीं कर सके। तो भगवान की शक्ति है, जब तक सहन करते हैं किसी क्षण अशुभ सभ्यता का विनाश कर सकते हैं। अंत में भक्ति की विजय होगी, श्री भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, ये उनका स्वभाव है। भगवान का यह नृसिंह रूप इतना भयावह था कि असुरों के वध के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो श्री ब्रह्मा जी आदि देवता भी फिर बताए कैसे भगवान को शांत किया जाए। भगवान स्वयं माला पहन लिए थे हाथ की, भयानक उनका मुख और उनका केसर मतलब कंठ के बाल सब लाल हो गए थे खून के बूंदों से। भगवान का यह अनुग्रह बॉम्बे में है, मायापुर में है। बॉम्बे में जब हिरण्यकश्यपु का आंत बनाया जा रहा था तो कलाकार भूल से गुलाबी रंग कर दिया, गुलाब का जैसा रंग हो, उसे मैंने कहा कि नहीं ये वक्त बड़ दूसरा गुलाब कीजिए। पटुए का रस्सी दिया था उसी को बना रहा है रक्त बिल्कुल लाल। वो आज भी है मंदिर में, कश्यप की आंख निकली। मायापुर में भगवान नरसिंहदेव हैं, परंतु बॉम्बे के नरसिंहदेव ज्यादा है। जो भी हो ये कहीं है, वही प्रभु हम लोगों की रक्षा करेंगे। श्री नृसिंह चतुर्दशी की जय, श्री नृसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।
हटो।
Thank you.